ये आकाशवाणी दिल्ली है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 1,000 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में फिर आने पर विद्यार्थियों के लिए बस सेवा फ्री करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया। राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव कल से नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। 1,000 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। आज नामांकन के अंतिम दिन भाजपा की शिखा रॉय और नीरज बैसोया ने नामांकन भरे। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, राखी बिल्डान और वंदना कुमारी ने भी पर्चे भरे। सोमवार को नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन है। एक रिपोर्ट।
आज राजधानी में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पदयात्राएं और बैठकें कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर, पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली भाजपा के कई नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी शहर में रोड शो और पदयात्राएं की। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और अन्य नेताओं ने भी मतदाताओं से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। इस विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किए गए वादों के बाद आज भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र पेश कर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पेंशन, LPG सिलेंडर और गरीब महिलाओं को वित्तीय लाभ से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर। आकाशवाणी समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता अपने अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में निर्वाचन आयोग के नो योर कैंडिडेट ऐप के माध्यम से सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। दिल्ली के मतदाता अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग की नो योर कैंडिडेट मोबाइल ऐप पर हासिल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से मतदाता प्रत्याशियों का पूरा लेखा जोखा हासिल कर सकते हैं। ऐप में उम्मीदवार की शिक्षा, आपराधिक मुकदमे, चलाचल संपत्ति का ब्यौरा, उम्मीदवार का पूरा नाम, पता सहित और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। इस ऐप पर प्रत्याशियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए प्रपत्रों को अपलोड किया जाता है और रिटर्निंग अधिकारी यह सत्यापित करता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है या नहीं। निर्वाचन आयोग की इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदर्श।
महंगे बुटीक, प्रसिद्ध बाजारों और आलिशान घरों के लिए प्रसिद्ध ग्रेटर कैलाश दिल्ली के पॉश और समृद्ध इलाकों में से एक माना जाता है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव में उन सीटों में से एक है जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। दक्षिण दिल्ली की यह सीट इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज फिर एक बार मैदान में है। लगातार 2013 से आम आदमी पार्टी के कब्जे में रही इस सीट पर भाजपा ने शिखा राय को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने मुकाबले को बनाने के लिए गर्वित सिंघवी को राजनीतिक अखाड़े में उतारा है। लगभग 1,87,000 मतदाता वाली इस सीट पर पार्किंग की समस्या से लेकर कूड़े के ढेर, जल भराव, पुरानी पानी की पाइपलाइन और बढ़े हुए बिजली के बिल जैसे मुद्दे ग्रेटर कैलाश के स्थानीय लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। इस विधानसभा में ग्रेटर कैलाश 1 और 2, शाहपुर जाट, ईस्ट ऑफ कैलाश, कैलाश कॉलोनी, CR पार्क तथा पंचशील पार्क जैसे इलाके शामिल है। इस चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सौरभ भारद्वाज इस सीट पर जीत का चौका लगाएंगे या फिर ग्रेटर कैलाश की जनता कोई उलटफेर करने जा रही है।
विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जारी आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने शहर में विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत आज करीब 7,000 होर्डिंग, 34,500 से अधिक पोस्टर बैनर और 11,000 से अधिक राजनीतिक दलों के झंडे हटाए गए। इस अभियान के अंतर्गत निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे 19,000 से ज्यादा झंडे और 2,000 से अधिक साइन बोर्ड भी हटाए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 244 मामले दर्ज किए हैं। वहीं 152 गैर लाइसेंसी हथियार, 23,400 लीटर से अधिक शराब, 14 करोड़ रुपए से 60 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ, 1,84,00,000 से अधिक की नकदी जब्त की है और 37 किलोग्राम से अधिक चांदी बरामद की है। दिल्ली नगर निगम का साउथ जोन अगले महीने 2 तारीख को मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन करेगा। ये दौड़ नेक्सस सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत से शुरू होकर निर्धारित मार्ग तक जाएगी। साउथ जोन के उपायुक्त श्री बादल कुमार ने कहा कि इस आयोजन की जानकारी या सहायता के लिए इच्छुक लोग दिल्ली नगर निगम के साउथ जोन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। श्री कुमार ने इस 5 किलोमीटर लंबी रन फॉर डेमोक्रेसी दौड़ के लिए नागरिकों को आमंत्रित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सत्ता में फिर आने पर विद्यार्थियों के लिए बस सेवा फ्री करने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से विद्यार्थियों को मेट्रो किराए में 50% की छूट देने की भी मांग की।
मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी की सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी द्वारा बाधित की गई योजनाओं को फिर से लागू करने का दावा किया। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में चल रही कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक समग्र विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो सब योजनाएं चलती रहेंगी। उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री की जिन योजनाओं को रोकने का काम या जिन योजनाओं को रोकने का पाप अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो योजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लागू होंगी।
भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया। उन्होंने बताया कि राजधानी में गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए और रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाएगी।
जो हमारी गरीब बहनें हैं उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी, और साथ ही साथ होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा।
श्री नड्डा ने कहा कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो ये अटल कैंटीन योजना के अंतर्गत सभी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों में 5 रुपए में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रति महीने मिलने वाली 2,000 रुपए की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई कार्यक्रम के कारण कल शहर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित होगी उनमें आजादपुर मंडी, सादिक नगर, आसपास का क्षेत्र, जहांगीरपुरी का सी और डी ब्लॉक, भलसवां, आदर्श नगर और आसपास का क्षेत्र तथा राजौरी गार्डन शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव 2024-25 का आयोजन कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में किया जाएगा। ये कार्यक्रम पहले सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक, जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया था। इसमें 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और मनोरंजक और शैक्षिक प्रारूप में रचनात्मक विज्ञान नाटकों का प्रदर्शन किया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण से लेकर चिकित्सा क्षेत्र में हुई उपलब्धियों तक के विषय शामिल थे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विषयों में विज्ञान को शामिल करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में दो पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार पिछले चार वर्ष में खिलाड़ियों के शानदार और सर्वाधिक असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पैरा निशानेबाज कोच सुभाष राणा, निशानेबाज कोच दीपाली देश पांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। एथलीट ज्योति यर्राजी और अन्नु रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी तथा पैरा तीरंदाज राकेश कुमार सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एथलीट सच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल के पास। अभिषेक, खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है, इस मुकाबले में क्या स्थिति है?
जी मुकेश, इस वक्त भारतीय महिला टीम का मुकाबला बांग्लादेश से जारी है। मैं आपको बता दूं, टर्न 3 समाप्त हो गया है और भारत का स्कोर 108 अंक और जबकि बांग्लादेश का सिर्फ 8 अंक है। तो भारत ने टर्न 3 तक इतनी बड़ी लीड हासिल कर ली है कि मुझे नहीं लगता टर्न 4 में वो वापसी हो पाएगी और भारत सीधे तौर पर सेमीफाइनल जा रहा है। और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला कल नेपाल की महिला टीम से होगा, क्योंकि नेपाल ने भी आज ईरान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है।
जी अभिषेक, अब कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला भी होना है, तो ये भारतीय टीम जो है वो किस टीम से खेलेगी?
हाँ मुकेश, मैं आपको बता दूं, भारत का मुकाबला श्रीलंका से होने वाला है, जो भारतीय महिला टीम के मुकाबले के सीधे बाद शुरू हो जाएगा। और भारतीय पुरुष टीम के प्रदर्शन की बात करें तो अब तक उन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत दर्ज की है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि आज भारत श्रीलंका पर कुछ हावी रह सकती है।
जी अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडप ने 140 वर्ष पुरानी हस्तचालित क्रेन को सफलतापूर्वक ठीक करके भारतीय क्रेन की धरोहर के स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया है। रेलवे ने बताया कि इस क्रेन की पुनः बहाली एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही, जिसे मात्र 3 दिन में पूरा किया गया। ये क्रेन 1885 में बनाई गई थी और इसे पहली बार अवध और रोहिलखंड रेलवे में उपयोग किया गया था। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में विद्युत मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री मनोहर लाल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का विकास किया जा रहा है। विद्युत मंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि देश में बिजली की स्थिति और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की जा रही है। कांग्रेस सांसद और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज का इंतजार कर रहे मरीजों से मुलाकात की। कल रात अपने दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि घरेलू मांग में वृद्धि के कारण भारतीय आर्थिक वृद्धि में तेजी आने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के नेतृत्व में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी लेख के अनुसार ग्रामीण मांग में तेजी बरकरार है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हुई। 1000 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में फिर आने पर विद्यार्थियों के लिए बस सेवा फ्री करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया। और राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव कल से नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।